संत नाभादास जी द्वारा लिखी हुई भक्तों की जीवन गाथा भक्तमाल, जिन्हें सरल भाषा में आप तक पहुंचा रहे हैं हमारे अपने प्रभु जी के परम भक्त अरविंद चौधरी जी।
राधे राधे। राधे राधे। भक्तमाल श्रृंखला में अमरीश जी की कथा का ये द्वितीय पार्ट है, आप सुनिए। तो अमरीश जी छोटी रानी के दर्शनों की लालसा में एक दिन महल में चले गए, यानी मंदिर में चले गए। रानी, छोटी रानी भगवान की आराधना में इतनी तल्लीन थी, आंखें बंद थी, अश्रुधार बह रही थी, और अमरीश जी धीरे धीरे मंदिर के द्वार पर पहुंच गए। इन्होंने देखा, पर इनके मन में थी कि एक बार रानी के दर्शन कर लें। तो ये आगे की तरफ गए और इन्होंने रानी को, जैसे ही ये पहुंचे और रानी को देखा इन्होंने, तो रानी, उनको भी लगा कि कोई आया है, तो अपना गान छोड़ करके, और वो समझ कर पतिदेव आए हैं, उनकी सम्मान करना चाहिए, तो वो गान छोड़ करके वो खड़ी हो गई। इन्होंने भी प्रणाम किया, उन्होंने भी प्रणाम किया, तो ये पीछे आ गई वापस, और इन्होंने बोला कि आप अपनी आराधना ऐसे ही रखिए, आप बैठ जाइए और हम सुनने के लिए आए हैं, आप हमें गान सुनाइए। तो वो बैठ गई, फिर उसने भगवान की जो स्तुति प्रारंभ की, इतनी आनंदमय स्तुति थी कि इनका, इनकी भी अश्रुधार बही, उनकी भी अश्रुधार बही। अब नित्य का कर्म हो गया, ये अपनी पूजा खत्म करके आते और रानी के महल में आ जाते और रानी से गान सुना करते। ये सब रानी को विदित हो गया, सबको ज्ञात हो गया, सब रानियों की, छोटी रानी के यहाँ उनका गान सुनने के लिए महाराज जाते हैं। मतलब ये प्रथम बार ऐसा हो रहा है किसी के स्वयं राजा जा रहे हैं। तो सब रानियों ने भी अपने अपने मंदिरों की और ठाकुर की राजा के सामने प्रार्थना करी, हमारे भी मंदिर बनने चाहिए और हमारे पास भी ठाकुर होने चाहिए। तो जितनी भी महल में रानियां थी सबके लिए अलग अलग मंदिर और अलग अलग ठाकुर की व्यवस्था हुई, ठाकुर विग्रह की, सबके ठाकुर हो गए। और पूरा वातावरण ऐसा हो गया कि सब रानियां, जिनका मन भी नहीं था, वो भी आराधना में लग गई। लेकिन कुछ दिन अगर आप भगवान की आराधना करते हैं बिना मन के भी करते हैं ना, तो स्वतः मन लगना शुरू हो जाता है भगवान में, क्योंकि वो तो है ही आनंद, आनंद आता है, वो आनंद है, वो रस है, वही से है, तो रसो वही से है, तो वो रस वही है, तो जब वो रस है तो रस तो मिलेगा। तो इसीलिए जितनी रानियां थी पूरे राजमहल में, पूरी प्रजा में भगवान नाम ऐसा गूंजा कि अमरीश जी के राज्य में भगवान नाम की ध्वनि हुआ करती थी, वो अमरीश जी का राज्य था एक बार। और यही नहीं, भगवान नारायण स्वयं अमरीश जी के साथ शाम के वक्त जब वो नौका विहार करते थे, तो भगवान नारायण बैठते थे नौका में, और नित्य, ये नित्य का कर्म होता था कि भगवान नारायण स्वयं आते थे और दोनों बात करते हुए चलते थे। एक दिन अमरीश जी ने पूछा भगवान नारायण से, नारायण ऐसे ही हंसते हुए बोल रहे थे कि मेरे जो दर्शन हैं वो अति दुर्लभ है, तो सैकड़ों सैकड़ों भी जन्म गुजर जाए मेरी आराधना करते हुए, तो भी मेरे दर्शन नहीं होते। अमरीश ने बोला, महाराज मुझे तो आपके दर्शन क्या, मतलब आप साक्षात नित्य मेरे साथ आप विहार करते हैं, नित्य हमारी बातचीत होती है, तो फिर ऐसा मैंने भी क्या, आपके सैकड़ों जन्मों तक मैंने भी आराधना कर रखी है क्या आपकी? भगवान मुस्कुराए कि सैकड़ों जन्म नहीं है, तुमने करोड़ों जन्मों से तुम मेरे भक्त बने आ रहे हो, करोड़ों जन्मों से। तो सोचो भगवान के वो कितने बड़े भक्त होंगे जो करोड़ों जन्म, भगवान ने बताया कि अमरीश तुम करोड़ों जन्मों से तुम वैष्णव बनते आ रहे हो। अब इससे पिछले की जन्म की कथा हम यहीं से कहते हैं इनकी। ये पिछले जन्म में एक सुनार थे और वैष्णव थे, भगवान नारायण के बड़े उपासक थे। इधर ये जो छोटी रानी थी, ये पिछले जन्म में एक वैश्या थी, उससे पहले जन्म में एक पंडित जी की कन्या थी। तो ये जो वैश्या वाला जन्म हम बताते हैं, उसमें इन्होंने पैसा इकट्ठा किया कुछ, और अपना जो पैसा इकट्ठा करके जिस वृत्ति से भी किया, इन्होंने भगवान शिव का एक मंदिर बनवाया था रानी ने, ये जो छोटी रानी थी, क्योंकि इनका भाव भगवान में था। भले ही इन्होंने वो, इन वैश्य भी वो किस लिए बनी कि जो वो ब्राह्मण की कन्या थी, उस जन्म में उनकी काम वृत्ति इन्हीं के, अमरीश जी के प्रति बहुत काम वृत्ति थी इनकी, तो उसी, हम भगवान गीता में कहते हैं कि हमारी जैसी स्थिति होती है, मनःस्थिति जैसी होती है मरते समय, वही हमें गति प्राप्त होती है। तो इनकी मनःस्थिति थी, काम से आतुर थी, उसी समय इनकी मृत्यु हुई थी, तो इनको जन्म मिला वैश्य का, तो वैश्य बनी हो अपने कर्म के अनुसार। ये सुनार बने, ये भगवान के भक्त थे, तो इन्होंने मंदिर बनवाया अपने पैसे से, और जितना भी पैसा उनका इकट्ठा हुआ, और इन्होंने मंदिर पे कलश चढ़ाया सुनार ने। और जब ये कलश और ये पधरा रहे थे वहाँ पे, तो इनकी मृत्यु हुई, गिरे वो जैसे भी हुआ तो इनकी वहाँ पे मृत्यु हुई। मृत्यु हुई तो ये बताते हैं कि मृत्यु के दौरान, क्योंकि भगवान शिव का मंदिर था तो भगवान शिव के पार्षद भी आ गए, और ये वैष्णव थे तो भगवान नारायण के पार्षद भी आ गए, तो दोनों कहने लगे कि भाई शिवलोक को लेके चलते हैं इनको, क्योंकि इनकी तो वृत्ति भगवान में थी नित्य, और वो ये भगवान का है, भगवान शिव का कलश चढ़ा रहे हैं। भगवान नारायण के पार्षद कहने लगे भाई ये तो भगवान के भक्त रहे हैं, शुरू से ही वैष्णव हैं, भगवान विष्णु की पूजा उपासना करते हैं, तो इन्हें विष्णु लोक जाना चाहिए। वो दोनों बात ही कर रहे थे कि इनका क्या होना चाहिए, तो भगवान की वाणी आई कि इनको अगला जन्म राजा का दिया जाएगा। तो ये अम्बरीश जी फिर राजा बने थे। तो इसमें ये वैष्णव थे, और अम्बरीश जी के रेफरेंस से ही सही भगवान ने ये बताया है कि मैं भक्तों के कैसे अधीन हूँ, कि कितना भी बड़ा तपस्वी क्यों ना हो वो भी मेरे सामने कुछ नहीं है, मतलब मैं उसको भी इग्नोर कर सकता हूँ अगर एक तरफ मेरा भक्त खड़ा हुआ हो। भक्त कैसा, जिसके जो सर्वस्व मेरे लिए अर्पण करता हुआ अपना। तो ये अम्बरीश जी की कथा थी। द्वितीय कथा हम शुरू करते हैं श्री शबरी जी की। शबरी जी भगवान की, ऐसे ही जैसे अम्बरीश जी भक्त थे, ऐसे ही माँ शबरी भगवान की भक्त हुई है। तो इनकी पहले आज हम सिर्फ पूर्व जन्म की शबरी की कथा कहेंगे, अगले जन्म के अगले पार्ट में कहेंगे। तो पूर्व जन्म में शबरी जी रानी थी, राजकुमारी थी, राजकुमारी थी तो पर्दे में रहती थी, कहीं नहीं आना जाना नहीं होता था, लेकिन भगवान की बहुत बड़ी भक्त थी, संतों में बड़ा भारी विश्वास था और संतों की सेवा करना चाहती थी, लेकिन राजकुमारी होने के नाते इन्हें बाहर नहीं निकाला जाता था, ये बाहर संतों से उनकी सेवा नहीं कर सकती थी, चरण स्पर्श नहीं कर सकती थी, शीत प्रसादी ग्रहण नहीं कर सकती थी, तो इनके मन में बड़ी खिन्नता रहती थी। एक बार ये प्रयाग में गई, वहाँ पे बहुत बड़ा आयोजन किया हुआ था, त्रिवेणी स्नान किया इन्होंने। स्नान करने के बाद इन्होंने माँ गंगा से, इन्होंने ये था कि वहाँ पे बहुत सारे साधु होंगे तो मैं उनके चरण स्पर्श कर पाऊँगी और अपने हाथों से सेवा कर पाऊँगी, पर वहाँ इतना पहरा था कि अपने मंत्री परिषद का इतना पहरा था कि राजकुमारी को किसी भी साधु की डायरेक्ट सेवा करने का अवसर प्रदान नहीं हुआ, प्राप्त नहीं हुआ। तो इन्होंने वहाँ खिन्नता में माँ गंगा हाथ में लेकर के त्रिवेणी में संगम में, और माँ गंगा से प्रार्थना करी कि अगर आप मेरे हृदय की ये पीड़ा समझ रही हो, संत सेवा में कैसे चाहती हूँ, तो मुझे अगला जन्म देना ना, तो मुझे आप ऐसी जगह देना, ऐसे बनाना कि मैं कहीं दासों के घर में पैदा हूँ, तब जाके मैं कहीं हरि भक्तों की सेवा कर पाऊँ, मुझे हरि भक्तों की सेवा करनी है। तो अगला जन्म शबरी जी का हुआ एक शूद्र के घर में, और पूर्व जन्म के संस्कार के कारण इन्हें भगवत भक्ति स्वतः प्राप्त थी। तो भगवान की इतनी बड़ी भक्ता थी ये, कि दिन रात भगवान का स्मरण किया करती थी, साधु संतों में बड़ा भाव था। विवाह का अवसर आया, विवाह के अवसर पर इन्होंने देखा कि इनके पिताजी ने बहुत सारे पशुओं को, करीब सैकड़ों पशुओं को बांध के, वो भेड़ वेड़ बहुत सारी बांधी हुई थी कि इसके विवाह में उनकी बलि दे करके वो खाई जाएंगी, बारात को खिलाई जाएंगी। जब इनको ज्ञात हुआ कि इतने जानवर मेरे ब्याह में मरेंगे, तो इनका मन बड़ा दुखी हुआ कि नहीं, ऐसे ब्याह से, ऐसी शादी से क्या लाभ कि इतने जानवरों की बलि देनी पड़े। इन्होंने क्या किया कि रात में सारा वो जहाँ पे वो पशु थे वो उनका बाड़ा खोल दिया, वो सारे पशुओं को आज़ाद किया, और रात में ही ये अपना घर छोड़ के भाग गई। ये भागते 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 ये आई जहाँ पे मतंग ऋषि का आश्रम था। मतंग ऋषि के आश्रम के आसपास ही इन्होंने अपना आश्रय ग्रहण किया, जंगल में रहने लगी, और इन्होंने देखा कि यहाँ पे साधु संत बहुत रहते हैं। अब साधु संत की तो सेवा करने की भावना पूर्व जन्म से थी, तो इन्होंने चुपके से, कुछ लोग तो करते हैं सेवा दिखा करके, पर एक तो ये शूद्र थी, इनके मन में ये था कि अगर साधु संतों को पता चल गया तो मेरी सेवा लेंगे नहीं। ये पहले इन्होंने देखा कि साधु संत किस तरीके से अपनी, मतलब क्या क्या काम करते हैं यहाँ, तो उन्होंने देख लिया कि लकड़ी लेके आते हैं, इन्हें जल की आवश्यकता होती है, जिस मार्ग से ही सुबह स्नान के लिए जाते हैं वो मार्ग वो साफ़ कर दें, कंकड़ पथरीले होता है वो, तो ये रोज़ आना, नित्य प्रति वो मार्ग जिससे साधु संत आया जाया करते थे उसको साफ़ करती थी रातों रात, लकड़ियाँ काट के बांध के वो पूरे गट्ठर रात के रात में आश्रम में पहुँचा दिया करती थी। अब कुछ लोग तो इसमें ध्यान नहीं दे रहे थे, साधु लोग, लेकिन मतंग ऋषि, उन्होंने ध्यान दिया कि कोई तो है जो सेवा कर रहा है, कौन है इसे देखना चाहिए, तो वो इस ताक में लगे कि ये पकड़ना है। सेवा करने वाला भी चोर होता है, सेवा, जैसे हमने अम्बरीश जी के चरित्र में सुना कि उनकी जो पत्नी थी वो उनकी सेवा चुरा लिया करती थी, इसी प्रकार शबरी जी सेवा चुरा रही हैं। तो मतंग जी ने कहा ये चोर कौन है, इसे पकड़ते हैं। तो उन्होंने एक दिन देखा रात में शबरी जी आई और गट्ठट रखड़ी का रख दिया। तो मतंग जी ने उन्हें देखा, अरे कौन है इधर, तो वो डर गई, सामने नहीं आई, पीछे छिप गई बेचारी। इसलिए डर के मारे भी छिप गई कि शूद्र हैं, कहीं इन पे परछाई ना पड़ जाए। वो सब भी होता है उनके मन में कि कहीं परछाई और ये ऋषि लोग हैं, हम इनके सामने नहीं जा सकते। छिपी हुई एक साइड में खड़ी रही। मतंग ऋषि ने पूछा, कौन हो तुम? बोली नहीं, घबरा गई वो। देखा मतंग ऋषि ने कि ये तो बहुत घबरा गई है। तब उन्होंने प्यार से पूछा, बेटा कौन है आप तो इतनी बड़ी सेवा ऋषियों की कर रही हो, आपके मन में, आप तो बड़े भाग्यशाली हैं, कौन हो? जब उनकी इस तरीके से वो करी तो उसने बताया शबरी ने कि हम तो ऐसे ऐसे हैं और हम घर से भाग के आए हैं, हम चाहते हैं हमें इस आपकी सेवा से वंचित मत करना, हम सेवा करना चाहते हैं और बस भगवान का भजन करना चाहते हैं। तो मतंग ऋषि ने कहा, ठीक है, हम आपको कुटिया में जगह देते हैं रहने की, जंगल में ऐसे मत रहो, बहुत सारे हिंसक पशु हैं, कुटिया में रहो आप। उन्होंने कहा, नहीं, हम तो बहुत शुद्र घर में हैं, हमारी तो परछाई। अरे बोला, ये सब कुछ नहीं है, तुम रहो यहाँ पे, तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी और जो तुम्हारी मर्जी है तुम सेवा करो। मतंग ऋषि ने तो वो जानते थे, क्योंकि वो भाव भक्ति, भक्त की कोई जात नहीं होती, तो ये बात मतंग ऋषि जानते थे। लेकिन और ऋषियों ने जब देखा मतंग जी को, तो मतंग जी के साथ भी उन्होंने व्यवहार बंद कर दिया कि ये तो शुद्र के, मतलब शुद्र को इन्होंने शिष्या बना लिया है। तो और ऋषि भी मतंग जी से कट होने लगे कि इनके साथ में आना जाना, इनके साथ में बातें करना, इनके साथ में खान पान व्यवहार करना ठीक नहीं है, क्योंकि इन्होंने शुद्र शिष्या बनाई है। अब उन्होंने भगवान नाम दे दिया उनको और इन मतंग जी को कोई प्रभाव नहीं पड़ा कि हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमें पता है कि इसके भाव क्या हैं, कितने उच्च भाव हैं। और जब वो अपना पूरा जीवन शबरी जी ने मतंग ऋषि की, अपने गुरु की ऐसी सेवा करी कि जो सेवा एक सच्चा सहृदय शिष्य अपने गुरु की करता है, वो शबरी जी ने अपने तन मन धन सब से अपनी सेवा करी। धन तो उनके पास था ही नहीं, तो जब शबरी जी की सेवा से गुरुदेव इतने प्रसन्न हुए, उन्होंने उनके मन से निकला कि तुम्हें भगवान के दर्शन होंगे, साक्षात भगवान श्री राम तुम्हारे यहाँ आएंगे। अब गुरु की वाणी पे उन्हें पूरा विश्वास था कि नहीं आएंगे भगवान, वो तो भगवान के धाम पहुँच गए गुरु जी। और शिष्या अब राह देखने लगी कि भगवान आएंगे, अब कुटिया में ही भजन करने लगी जो रीति बताई थी नित्य प्रति, भगवान की राह देखने लगी। अब और जो लोग थे वो हंसा करते थे कि इसके पास आएंगे भगवान, इसके पास आएंगे भगवान देखने के लिए, लेकिन इसका दृढ़ विश्वास था अपने गुरु की वाणी में, अपनी साधना पे नहीं था। इसे लगता था मेरी साधना तो कुछ भी नहीं है, मेरे जीवन की कोई साधना नहीं है, बस मैं तो जो गुरु जी ने बताया वो कर रही हूँ, लेकिन मेरे गुरु की वाणी झूठी नहीं हो सकती, इसलिए भगवान आएंगे तो निश्चित आएंगे। इसलिए वो हर रोज उसी उत्साह के साथ भगवान का इंतजार किया करती थी, उनकी प्रतीक्षा करती थी, उनकी राह देखती थी, वैसे ही उनके लिए फल ला के रखती थी, वैसे ही रास्ता भी हम बुहार करती थी, साफ करती थी। तो अब उनकी परीक्षा गुरुदेव की कृपा से परीक्षा की वो घड़ी आई कि जब भगवान आने वाले हैं, प्रतीक्षा का अंत हुआ। और हम अगले एपिसोड में सुनते हैं कि किस तरीके से भगवान का उन्हें दर्शन होता है, किस तरीके से भगवान मिलते हैं, और शबरी जी के कारण ही इन ऋषियों को जो दुख प्राप्त हुआ, इन ऋषियों को भी दुख प्राप्त हुआ, उसका निवारण भगवान ने कैसे किया। जय श्री राधे।
ऑडियो पिटारा सुनना जरूरी है।